आप हैं SBS हिंदी के साथ।
एक नए देश में आने के बाद बहुत कुछ चीजों के बारे में सोचना होता है, उन्हें संभालना पड़ता है और बहुत कुछ नया भी सीखना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वर्षों से हैं तो भी शायद अभी भी कई ऐसी स्थितियाँ आती होंगी जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझ पाते होंगे। अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नए आने वाले प्रवासी चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए अपने समुदाय के पास ही रहने का फैसला करते हैं। लेकिन क्या अपने समुदाय के करीब रहना हमेशा आपके लिए अच्छा विकल्प है? तो आज सेटलमेंट गाइड में बात इसी विषय पर। ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने के दौरान आपको कई फैसले करने थे और उन फैसलों में से एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ आकर कहाँ रहना चाहते हैं। अब कई प्रवासी अपने ही देश के अन्य प्रवासियों के करीबी सबब में रहने का फैसला करते हैं। ये बात ठीक भी लगती है, समझ में भी आता है, क्योंकि वो एक सामान्य यानी कॉमन भाषा बोल सकते हैं, ऐसे लोगों से सपोर्ट ले सकते हैं जो उनके जैसे ही समान अनुभवों से गुजरे हैं और समान संस्कृति साझा भी करते हैं। माहिर मोहम्मद रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया के CEO हैं। उनका कहना है कि जहां आप रहते हैं वहां अगर एक ऐसा ग्रॉसरी स्टोर भी हो जो आपका जाना पहचाना खाना बेचता हो, ये भी आपको उस जगह पर रहने के लिए मदद कर देता है।
Those neighborhoods where there are also grocery shops and where you can go and buy groceries that are similar to what you already know. So the cultural shock in that case is very little because you may be coming from, let's say, a part in Africa or Asia or Latin America and you come to Australia and you live in a community that is similar. Therefore, you go to those shops and you buy those ingredients and groceries and all that.
वैसे एक बड़ा प्रवासी समुदाय अधिकतर शहरों में ही पाया जाता है, जहां आप एक प्रवासी केंद्र यानी एक माइग्रेंट सेंटर जैसा उपयोगी संसाधन पा सकते हैं।
It is nice to be in a bigger town where it is easy to go to various support organizations to understand English. To understand the various aspects of life here, some people would want to learn how to drive, and that's easier to do in the cities compared to non-city areas. It's also, of course, helpful to live close proximity with people who speak the same language.
बेरिवाना मोहम्मद एडिलेड में ऑस्ट्रेलियन माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एक स्वयंसेवक हैं। वो 1995 में बोस्निया और हर्जेगोविना से शरणार्थी के रूप में ऑस्ट्रेलिया आई थी। वो कई अलग अलग समूहों में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के माध्यम से बोस्नियन समुदाय के साथ एक मजबूत संबंध भी रखा है।
My mom was actually a social worker for the ex-Yugoslavia community, so she used to work with everyone from that region that used to come here as refugees even after we arrived. And even when I got into my teenage years and we did work experience through high school, I actually decided to do my work experience in her organization.
वो कहती हैं कि एडिलेड में बोस्नियन समुदाय के करीब होना एक सकारात्मक बात है, लेकिन इसकी वजह से नुकसान ये भी हुआ कि उनकी माँ के लिए अंग्रेजी सीखना मुश्किल हो गया।
She gained a lot of respect from her community for the work that she did, but not only from her own community. She was always helping everybody. Whoever asked her to, you know, for help, she would do it. She would gladly say yes. And the one thing I think that really wasn't good for my mom would have been that she didn't really improve in her English because she had to use her language to communicate with her clients.
फातिमा सलही एडिलेड के पास रहती हैं। वो 2018 में अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आई थीं। वो कई क्लब्स के साथ जुड़ी हुई हैं और यूनिवर्सिटी जाती हैं, लेकिन वो भी अफगान समुदाय के संपर्क में रहना ही पसंद करती हैं ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपने को एक दूसरे के साथ जोड़े रखें, इससे उनको सुकून भी मिलता है।
And we share our wins and happinesses. And yeah, of course, we understand the depth of the words that we say. So that is where we feel connected, we feel more happy and secure. We enjoy our gatherings And I think that is something beneficial too. That is something which gives us a peace of mind.
उनके माता पिता जो अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं उनके लिए अफगान समुदाय से निकटता और भी अधिक महत्वपूर्ण है. अगर वो अपने समुदाय के साथ ना मिलें तो वो अकेले हो जाएंगे. मोमन चेतावनी देते हैं कि जबकि एक और अपने समुदाय का सपोर्ट महत्वपूर्ण है लेकिन एक सिमटी हुई जगहों यानी लिविंग इन पॉकेट्स भी पूरी तरह से ठीक नहीं है. इससे वो प्रमुख समाज से यानी मेन स्ट्रीम में ढल नहीं पाते बल्कि कटे हुए रहते हैं.
Within those pockets, they speak their own language, and that removes them from connecting with the rest of the Australian community, which removes them from learning English, which removes them from understanding the culture and the norm of this country that they call home. And therefore, they live in those little pockets, and those little pockets may not be a very good representation of Australia as a whole.
मोहम्मद का कहना है कि जबकि ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी प्रवासियों के लिए उनके समुदाय के गरीब होना सकारात्मक है, खासकर जब वो पहली बार आते हैं. वैसे अपने समुदाय के पास रहने का मतलब हमेशा एक बड़े शहर में रहना नहीं होता है. आपको ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से प्रवासी समुदाय मिलेंगे. जैसे कॉफ्स हार्बर, बायरन बे की बात करें तो वहाँ भारत से एक बड़ा सिख समुदाय आकर बसा और वो वास्तव में सफल हुआ. या उदाहरण के लिए दूसरे क्षेत्रीय न्यू साउथ वेल्स या क्षेत्रीय विक्टोरिया की बात करें.
You take the example of Coffs Harbour in Byron Bay, and those areas, big Sikh community from India has come and settled there. They are really successful there. Or for example, you take the examples of other areas in regional New South Wales or regional Victoria. Now, if newcomers of those backgrounds are coming and going to those regional areas, they already have an existing presence of similar people in there.
तो अधिकांश प्रवासियों को अपने समुदाय से सपोर्ट मिलने से फायदा होता है, खासकर जब वो किसी देश में नए हों. लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि अन्य ऑस्ट्रेलियन लोगों के साथ भी संबंध बनाए रखना.
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें. SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें.